हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री गौर निताय के शरणागत उपनशील के भक्त वृंद और दामोदर देश से हंस गोकुल और चारु प्रिय माता जी और उनके सहयोगी भक्तगण, आप सब फेसबुक के ऊपर भी जो भाग्यशाली रोज इस शाम के भागवत के सत्संग का शुभ लाभ ले रहे हैं, उन सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के और सॉरी 11वें स्कंद के 9वें अध्याय के अंतर्गत कुछ शेष गुरु जिनसे अवधूत दत्तात्रेय ने शिक्षा ली है उनका श्रवण कर रहे हैं। कल हमने सर कर मतलब तीर बनाने वाला, उसका ध्यान तीर में होता है और वो इतना ध्यान मगन होता है कि उसके कान खुले होते हैं, आंख खुली होती है, लेकिन उसको न कोई आवाज़ सुनाई देता है न कोई दृश्य दिखाई देता है। तो ऐसे जो भगवत ध्यान में संलग्न हो उसको, जो भगवत ध्यान में जो अच्छी तरह से तलीन हो उसका ऐसे आँखों के द्वारा विक्षेप भी नहीं होना चाहिए, इंद्रियों के द्वारा, सब इंद्रियों के द्वारा बाहर मन भटके नहीं और अंदर में भी ले न हो। तो ये शिक्षा जो है, ये शिक्षा किससे मिली है, ये शिक्षा किसकी शिक्षा की बात, सर कर तीर बनाने वालों। एक प्रसिद्ध उदाहरण संत महात्मा इस विषय में हमेशा देते हैं। प्रॉब्लम कनेक्टिंग टू ऑडियो, कहता है प्रॉब्लम है कनेक्टिंग टू ऑडियो, उनका नेट थोड़ा रुक गया। हाँ अपना चालू हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ कुछ नेट का कुछ डिस्टरबेंस हुआ है, उसको ठीक करते हैं, नेट में डिस्टर्ब। हाँ हाँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आया है फिर क्यों नहीं चल रहा है, तहाँ जो चल रहा मुझे ही डिसकनेक्टिंग, ये इधर का चल रहा है अपने को। हाँ अचंड अचिन आयो ने आयो को हाँ अच्छी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा ठीक है, हाँ, सो सर कर के अंतर्गत एक उदाहरण प्रायः संत समाज में चलता है, और लोग कभी कभी हमारे भक्तों को भी जब वो सत्संग वो कैसे जप आदि करते हैं तो डिस्टर्ब होते हैं, तो एक उदाहरण देते हैं। कल हमारे को देना था लेकिन रह गया, उसके साथ एक और भी उदाहरण याद आ रहा था। कोई सामान्य ध्यान करने वाला साधु कहीं बैठ के ध्यान कर रहा था, और कहीं एकांत में ध्यान कर रहा था, लेकिन कोई स्त्री प्रेमी अपने से मिलने के लिए जा रही थी। वो इतनी उसमें मगन थी कि जाते हुए उसने उस साधु को देखा नहीं, और उसके ऊपर उसको ठोकर लग गई, ये नीचे गिरी, उठी और चली गई। साधु दूसरे दिन उस स्त्री को देख के कहते, कल तुम अंधी थी, यहां से जा रही थी, मेरे ऊपर गिर गई। बोला, मुझे तो मालूम नहीं महाराज। बोला, आप गिरी थी फिर उठ के चली गई, मैं ध्यान में बैठा था, मेरा ध्यान डिस्टर्ब हो गया। बोला, मुझे तो याद नहीं है कुछ भी, लेकिन अगर आप ध्यान में बैठे थे तो फिर आपको मेरे नजर कैसे में आ गई, मेरे को कैसे आपने पहचान लिया। मैं दुनिया के प्रेमी के ध्यान में जा रही थी, मुझे तो आप भी दिखाई नहीं दिए, और मैं गिरी थी ये भी मुझे याद नहीं है, और आप अच्छी तरह से यहाँ आसन प्राणायाम करके ध्यान में बैठे थे, और आपको मेरी ठोकर का याद है और मेरी शक्ल भी आपको याद है, तो ये आपका ध्यान कच्चा है। तो ध्यान में तब हमको चैतन्य महाप्रभु की ये कथा याद आती है कि जब वो गरुड़ स्तंभ के पास खड़े हैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए, तो एक बूढ़ी ओडिशा की माता जी चैतन्य महाप्रभु सन्यासी के कंधे के ऊपर चढ़ के और ऊपर से दर्शन करने लगी। तो महाप्रभु के तो सेवकों ने उसको मना की, लेकिन महाप्रभु ने कहा, नहीं नहीं, इसको जितना भगवान को देखने की उत्कंठा है, इसको ये भी दिखाई नहीं दे रहा है कि नीचे कोई साधु सन्यासी खड़ा है कि आज, लेकिन वो भगवान को देखने में तन्मय इतनी है कि उसको बाहर की कोई स्मृति नहीं है, इसका मतलब वो विक्षेप से बची हुई है। तो ये दो उदाहरण कल के में थे। उसके बाद जो हम सर्प से शिक्षा ले रहे थे, सांप से तो घर नहीं बनाना चाहिए, साधु को अकेला अलक्षित विचरण करना चाहिए और हमेशा सावधान रहना चाहिए और कम बोलना चाहिए, उसके अंतर्गत कल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के शिक्षाओं के अंतर्गत हम देख रहे थे कि वो लिखते हैं कि ऐसे साधु सामान्य रूप से कई जन्मों से हमारा इस संसार के अंदर घर परिवार के व्यवहार के साथ रहने के कारण भगवत भक्ति की तरफ एकाग्र चित होके लगने में बाधा पड़ती है, और जब तक हम कुछ नियमों का पालन ठीक तरह से नहीं करते, अपने आप को नियमों के अंदर नहीं बांधते, तब तक हमारा आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना इतना सफलता वाला नहीं हो सकता है। इसका मतलब है जीवन में कुछ नियम बनाने चाहिए और उस नियमों के ऊपर चलना चाहिए, नहीं तो संसार की आसक्ति से निकलना असंभव है। तो इसलिए जो असल में गुरु जो हमारे पास प्रणाली में दीक्षा देते हैं, तो हृदय में भक्ति का बीज देते हैं, वो भक्ति के नेम है। तो ऐसे कोई साधन भक्ति करने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को 64 भक्ति के अंगों का वर्णन किया था कि इन नियमों का पालन करने से भगवान की तरफ हमारी आसक्ति बढ़ेगी, भगवान में हमारा प्रेम बढ़ेगा, और जितनी मात्रा में भगवान की तरफ हम आगे बढ़ेंगे उतना संसार के बंधन से मुक्त होते जाएंगे। तो उन 64 नियमों में पहले 3 नियम बहुत प्रमुख हैं। पहले 3 नियम जो है सबसे प्रमुख है कि गुरु के चरणों का आश्रय लेना, उससे दीक्षा और शिक्षा लेना, और शिक्षा में लिखा है विशेष रूप से भागवत का अध्ययन करना, और फिर विश्रम्भेन गुरोर सेवा, और बड़े श्रद्धा के साथ उत्साह के साथ गुरुजनों की सेवा करना, और फिर है पूर्व आचार्यों के बताए हुए मार्ग के ऊपर चलना। ये प्रवेश द्वार हैं भक्ति के साधन करने के लिए। और फिर अंतिम पांच अंग जो भक्ति के हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। सारे अंगों में ये पांच अंग श्रेष्ठ हैं, अगर इनका नेम से साधन करने का अभ्यास किया जाए तो संसार के बंधन से मुक्त होकर दुर्लभ मानव जन्म का परम लक्ष्य भगवान के प्रेम की प्राप्ति की जा सकती है। और उन पांच अंगों में एक अंग है भगवान के नाम का सुमरण रोज करना, नाम कीर्तन, नाम सुमरण। अकेला है तो नाम का जप करे, परिवार के साथ है, मित्रों के साथ है तो भगवान के नाम का कीर्तन करे। दूसरा है श्रीमद् भागवत का नित्य नेम से अर्थ के शब्दों के अर्थ का रस आस्वादन करता हुआ अपने जीव को, अपने जीवन को भगवान के मधुर गुण रूप और लीलाओं के साथ जोड़ के रखे। और तीसरा है घर में भगवान के श्री विग्रह को स्थापन करके ठाकुर जी को घर का मालिक बनाकर और प्रेम पूर्वक उसकी अर्चन पूजन करे, उसको भोग लगाए जो घर में बनता है, शुद्ध सात्विक भगवान को भोग लगे, परिवार प्रसाद खाए। और चौथा नियम है भक्तों का संग करना चाहिए, भक्तों के संग में भगवान का नाम जपना चाहिए, भक्तों के संग में भागवत का श्रवण करना चाहिए, भक्तों के संग में विग्रह की सेवन में संलग्न होना चाहिए। और पांचवा है भगवत धाम में मथुरा वास। लेकिन ये ऐसा है कि मन से हम अगर वहाँ शरीर से नहीं रख सकते हैं तो उसके विषय में सुने, उधर का ध्यान करें, उधर जाने की इच्छा करें, उनका दर्शन करने की इच्छा करें, तो भी शरीर से न रह सकें तो मन से वहाँ धाम में रह सकते हैं। तो ऐसे नियमों से अपने आप को अगर जीवन में जोड़ के रखेंगे, जैसे भक्ति के नियम हमारे को दिए हुए हैं, भगवान का उठ के सुबह मंगल आरती आदि करना, भागवत का श्रवण करना, तुलसी का अर्चन करना, तो ये नियमों में भी बंधे रहेंगे तो आस्ते आस्ते हमारा संसार से बंधन कम होता जाएगा। तो जीवन में नियम है, नियम है तो मानव है, और नियम नहीं है तो पशु के स्तर पे आ जाता है। तो जीवन में जैसे हमारा स्कूल में बच्चों के जाने का टाइम होता है, आने का टाइम होता है, हमारा दुकान पे जाने का टाइम है, आने का टाइम है, नौकरी में जाने का टाइम है, आने का टाइम है, ऐसे रसोई में करने पकाने का टाइम है, बर्तन धोने का टाइम है, ऐसे हमारा कुछ अपनी आत्मा के उद्धार के लिए कुछ समय भगवत भक्ति के कार्यों को भी नियम से करना चाहिए, उसका भी नियम बना के रखना चाहिए जीवन में। जीवन में कहीं समय में अपने आप को बांधेंगे, सीमा में बांधेंगे, समय में बांधने का मतलब एक घंटा में यहाँ बैठूंगा, यहाँ से उठूंगा नहीं, सीमा में बांधने का मतलब इसी जगह पे मैं रोज बैठूंगा, तो ऐसे उसमें इतने समय तक यहाँ बैठूंगा, यहाँ से नहीं उठूंगा, ऐसे करने से आस्ते आस्ते हमारा आसन भी पक्का होता है और मन को भी फिर मालूम हो जाता है कि ये आधा घंटा यहाँ से उठने वाला नहीं है, इसको अब इसको परेशान करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने नेम ले लिया। तो इस तरीके से सीमा में और समय में अपने को बांधने का, जैसे हमने रोज नेम रखा है 6:30 बजे कथा करेंगे, तो ये हम सब कहीं भी कोई काम करते हैं तो इसके लिए बैठ जाते हैं आके, तो ऐसे कुछ जीवन में नेम लेना चाहिए। अब हम शिक्षा ले रहे हैं मकड़ी से, मकड़ी जो जाला बनाती है तो उर्मी कहते हैं उसको, उर्ना इसका नाम जो है मकड़ी, हमारी भाषा में अपने सामान्य भाषा में इसको मकड़ी कहते हैं। तो ये मकड़ी जाला कैसे बनाती है, कहीं से बाहर कुछ नहीं लाती है, सब कुछ अपने अंदर से अपने मुख से निकालती है। एक अच्छा सा जाला वो एक पूरा घर अपना बना देती है और घर के अंदर थोड़े दिन घूम खाती है, पीती है और छोटे छोटे जीव उसमें काबू करती है, और फिर जब उसका मन करता है तो उस सारे जाल को खुद खा के वापस अपने पेट में ले लेती है, उधर नाम निशान तक नहीं रहता है। और इसको देखकर अवधूत ने भगवान कैसे इस दुनिया को बनाते हैं, कैसे सृष्टि करते हैं और कैसे फिर इसको वापस अपने आप में समा लेते हैं, ये बड़ी अद्भुत दिव्य भगवान की सृष्टि लीला की शिक्षा एक तुच्छ जीव से ली है। इसका मतलब है कि कितना हमारे को खुली जिसको कहते ब्रॉड विजन के साथ हर चीज के अंदर से शिक्षा लेने के लिए हमेशा जो है बहुत तत्पर होना चाहिए। शिला प्रभुपाद जी ऐसे कई बार मॉर्निंग वॉक में चलते हुए वो एक बार समुद्र के किनारे खेकड़े को देखा, बोला इससे क्या सीख सकते हो, देखो बड़े समुद्र के शरण में होता है तो कोई परवाह नहीं है और ये बाहर आ गया तो इसको कोई भी पत्थर मार रहा है, तो हम भगवान बड़ा है उसका शरण ले लेंगे तो हमेशा बचे रहेंगे, और संसार में किसी तुच्छ व्यक्ति का शरण लेंगे तो हमारा सब कुछ जो है उससे वो हमारी रक्षा कर नहीं सकता है। तो ऐसे कोई भी छोटी चीज प्रभुपाद जी के जाते चलते फिरते वहां से शिक्षा लेके अपने शिष्यों को, मेरे ख्याल में आपको कहा था या नहीं कहीं और कहा था, एक बार प्रभुपाद ऐसे घूमते हुए कुत्ते कुछ घूमते देखे जू बीच पे, तो अपने शिष्यों को कहा इन दोनों कुत्तों में क्या अंतर है, तो वो तो बेचारे विदेशी कह रहे थे ये कोई जर्मन होगा, ये कोई तो वो छोटा सारा है, ये फलाना है। प्रभुपाद ने कहा अच्छी तरह से देखो, एक कुत्ते के गले में पट्टा बंधा हुआ है, इसका मतलब इसका मालिक है, अगर इसका मालिक होगा तो इसको कोई भी म्यूनिसपालिटी वाला ले जा के विष दे के मारेगा नहीं, और ये दूसरा है ये लावारा कुत्ता है, ये ऐसे ही घूमता रहता है धक्का खाता है, इसको पकड़ के ले जाएंगे इसको मार देंगे विष देकर। इससे ये शिक्षा मिल रही है जिसके गले में कंठी माला डली हुई है इसका मतलब वो भगवान का है, उसको यमदूत कभी नहीं पकड़ सकते हैं, और जो भगवत प्रायण नहीं है कंठी माला गले में नहीं है इसका मतलब वो भटकता हुआ कुत्ता है जिसको म्यूनिसिपलिटी वालों पकड़ जाता है, ऐसे यमदूत समय आने के ऊपर उसको पकड़ के यम लोग जाके यातना देंगे। अब ये सामान्य दो कुत्तों के अंदर से ऐसी शिक्षा प्रभुपाद जी का दृष्टिकोण, वो एक शराबी को देखा प्रभुपाद जी ने अमेरिका में, बोतल को ऐसे प्रेम से पकड़ के खड़ा था, प्रभुपाद देखा कि इस शराबी को जितना इस बोतल और शराब से प्रेम है इससे थोड़ा कम भी हमारा भगवान की तरफ प्रेम हो जाए तो भी हमारा जीवन सफल हो जाए। तो ऐसे कहीं से कोई भी शिक्षा लेने के लिए हमेशा बुद्धि को खुला रखना चाहिए, तो बहुत सी शिक्षाएं मिल सकती हैं, ऐसे कई अद्भुत शिक्षाएं हमारे को अपने आचार्य गणों से भी मिली हुई हैं। तो यहाँ इस छोटे मकड़ी से जाल बनाना ये तो बड़े इंजीनियरों के बस की बात नहीं है, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बाहर से बगैर चीज लिए कोई एक छोटा घर बना के दिखाए, मिट्टी लेगा तो उसकी नहीं है, पत्थर लेगा, सीमेंट लेगा, पानी लेगा, आयरन लेगा, लोहा लेगा, ये उसका अपना नहीं है, कुछ कोई मदद करने वाला भी नहीं है। अगर आपको कोई भी काम करने वाला न मिले और कोई सामान न मिले तो आप कुछ भी नहीं बना सकते हैं। लेकिन वो मकड़ी बिना किसी के सहारे के और बिना किसी सहयोग के किसी और बाहर की वस्तु से अपना घर बना भी लेती है और उसको समेट भी लेती है। तो इससे भगवान की सृष्टि लीला का वर्णन हो रहा है। तो सृष्टि लीला के वर्णन में देखो ये भगवत नाम का यहाँ बहुत बड़ा ये जो श्लोक 16वां है, एको नारायणो देवः, ये तीनों शब्द भगवान का नाम कीर्तन है। भगवान एक है, दो नहीं है, भगवान एक ही है, अद्वैत है, दो नहीं है, और उसका नाम नारायण है जो नार रूपी जीव समूह को धारण करता है, देव है और वो सबको देने वाला है, वो देव है। और फिर लिखा है पूर्व सृष्टम स्व माया, पूर्व सृष्टम का मतलब पहले उसने ये सारी सृष्टि अपनी माया के द्वारा किया, जो सृष्टि भौतिक सृष्टि है ये भगवान की त्रिगुणी माया उसके द्वारा होती है, बाहरंग शक्ति के द्वारा होती है, और ये करने के बाद क्या करते हैं, संहृत्य है काल कलया, और अपने ही भगवान का अपना ही काल स्वरूप है उसका, उसके द्वारा इसका संहार कर लेते हैं, मकड़ी की तरह अपने आप से निकालते हैं, अकेले हैं और कोई नहीं है, और फिर वापस जब चाहते हैं अपने काल रूप से सारे को समेट के अंदर ले लेते हैं। कल्पांत इदम, इस कल्प के अंत में, कल्प के अंत के मतलब ब्रह्मा जी क्या जब दिन पूरा होता है उसके बाद जैसे अपने अंदर समेट लेते हैं रात को, और सारे देवता ब्रह्मा जी में जाते हैं और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु में चले जाते हैं, और फिर जब दिन होता है, ब्रह्मा जी की रात पूरी होती है, जब दिन होता है तो फिर गर्भोदक्षाई के अंदर से वो कमल का डंडा निकलता है, कमल का फूल निकलता है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है और फिर नई सृष्टि शुरू होती है। तो ये एक लोक का सृष्टि का बात करें तो ऐसे होगी। फिर ईश्वरः, वो भगवान जो है सबका नियंता है, सब कुछ उसके बस में है, और वो अकेला स्वतंत्र है, एक एवा अद्वित्व, वो एक है, एव अद्वित्व, कोई दो नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर जो ये सृष्टि है वो भगवान से अलग दिखती है, लेकिन जब ये सृष्टि है तब भी ये भगवान के अंदर है, और जब सृष्टि नहीं दिखती है तब भी ये सारा सामान भगवान के अंदर है, जीव और ये भौतिक प्रकृति दोनों भगवान के अंदर है। अब जब दिखती है तब भी अंदर है, जब नहीं दिखती है तब भी अंदर है, लेकिन भगवान इनके अंदर नहीं है, क्योंकि ये भगवान का योग और ऐश्वर्य है। एक एक एव द्वितीयो अभूत, भगवान एक है, तो ये प्रकृति जो है वो दूसरी चीज है, ये विजाति है। विजाति का मतलब है ये जड़ है। एक दो शब्द होते हैं सजाति और विजाति। सजाति जीव जो है वो तो चेतन है, और ये प्रकृति है ये विजाति है, ये जड़ है। ये दोनों अलग सृष्टि में, इस दुनिया में क्या है, सृष्टि में दो ही चीजें हैं, भगवान की बाहरंग शक्ति प्रकृति जो जड़ है, और भगवान की तटस्थ शक्ति जीव जो इस प्रकृति के अंदर भोग करने के लिए आए हैं। ये दो ही चीजों का विस्तार है दुनिया के अंदर, लेकिन ये दोनों चीजें सजाति और विजाति होने के बाद भगवान एक में दोनों एक हो जा होके उधर रहती हैं। आत्म आधारों का मतलब है भगवान को किसी और के आधार की जरूरत नहीं है, भगवान स्वयं आश्रित स्वयं आधारित हैं, उसको किसी और के आधार की नहीं जरूरत है। और हम सब पर आधारों हैं, हमारा जीवन दूसरे के ऊपर आधारित है। हम घर बनाएंगे तो मिट्टी चाहिए, हमारे को काम करने वाला चाहिए, सीमेंट चाहिए, हमारे को भोजन करना है तो कोई किसान जब खेत में बोएगा, अनाज पैदा करेगा, बाजार से लाएंगे तब खाएंगे, तो हमारा जीवन दूसरे के ऊपर आश्रित है। लेकिन भगवान जो है वह आत्म आधार हो, वो आत्म आधार है, मतलब अपने ही ऊपर आश्रित है, वो किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, सारा जगत उसके ऊपर आश्रित है, लेकिन वो स्वतंत्र है अपने, किसी वो उसके ऊपर कोई आश्रित नहीं है। अखिल ईश्वर, अखिल ईश्वर है जब कहते हैं तब भगवान कारण दक्षा है, विष्णु की तरफ संकेत जाता है कि सारे लोकों का वो ईश्वर है, जितने ब्रह्मांड है वो सब उसके रोम कोपों से निकलते हैं, और फिर जब वो सांस लेता है तो ब्रह्मांड निकलते हैं, और सांस वापस बाहर निकालता है तो जगत निकलते हैं ब्रह्मांड, और सांस अंदर लेता है तो सब ब्रह्मांड चले जाते हैं अंदर उसके पेट में चले जाते हैं। तो सारे ब्रह्मांडों को लेकर कारण सागर में शयन करते हैं कारण दक्षाई विष्णु, और एक ब्रह्मांड के सब चीजों को, जीवों को और सारी भौतिक प्रकृति के सारे ही चीजों को लेकर गर्भोदक्षाई अपने पेट में डाल के और शेष शैया के ऊपर शयन करते हैं। ये सब जो कुछ पहाड़ पर्वत नदियां, ये दुनिया में जो कुछ दिख रहा है ये सब का सब भगवान के पेट के अंदर चला जाता है। ये भगवान का विश्व, ये बड़ा विराट रूप है, इस विराट रूप में ये सब समा जाता है। तो यहां सृष्टि करने के लिए जो भगवान के दो रूप है, कारण दक्षाई विष्णु कारण सागर में शयन करने वाले, और क्षीर गर्भोदक्षाई विष्णु गर्भ सागर में शयन करने वाले, जो सृष्टि का कार्य करते हैं, एक सब ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करते हैं उसको महाविष्णु कहते हैं, भूमा पुरुष कहते हैं, और दूसरा एक लोक की सृष्टि करते हैं उसको गर्भोदक्षाई विष्णु कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में हमारा आत्मा है, ऐसे एक लोक का आत्मा जो उसके अंदर प्रवेश करता है तब वो लोक जो है उसके अंदर जीव जीवों की उत्पत्ति होती है, सृष्टि होती है, वो है गर्भोदक्षाई विष्णु। सो अब इस श्लोक का ये इसका भाव है सारा, और चक्रवर्ती पाद कहते हैं यहां कारण दक्षाई विष्णु क्योंकि अखिल ईश्वर के नाम है इसलिए लिखा है। अब हम 17वें और 18वें श्लोक का पाठ करेंगे, और इन दो श्लोकों में हाँ कालेनात्मना अनुभावेना साम्यं नीतासु शक्तिषु सत्वादिषु आदि पुरुषः। अब ये प्रलय कैसे करते हैं, ये प्रलय के जो प्रलय भगवान करते हैं ना उसकी प्रक्रिया बता रहे हैं। जब संसार को प्रलय भगवान को करनी होती है तो काले न आत्म अनुभावे न, जो काल रूप है भगवान का, एक काल का रूप है जिससे ये सारे संसार का चक्कर चल रहा है, काल चक्कर कहते हैं, ये भगवान का अपना ही एक अव्यक्त रूप है। अनुभावे न मतलब स्वयं की, भगवान का अपना स्वयं का काल का जो रूप है उस रूप से भगवान क्या करते हैं, साम्येन, साम्येन का मतलब बराबर कर देते हैं। किसको बराबर कर देते हैं, तीनों गुणों को, सतो रजो तमो गुण को एक स्थिति में समान करते हैं, इसको प्रलय कहते हैं। गुणों में हलचल हो गई तो सृष्टि हो जाएगी, गुणों में विक्षेप हुआ तो सृष्टि, और गुण अगर इक्विलिब्रियम में आ गए, समन इक्विलिब्रियम में आ गए तो समझो के प्रलय हो रही है। तो ये जो सामयम नीतासु शक्तिषु कैसे करते हैं भगवान, अपने बस में किसकी, अपनी शक्ति के द्वारा। कौन सी शक्ति है, काल शक्ति के द्वारा गुणों को सामान्य रूप में लाते हैं। कौन से गुण, तब लिखते हैं सत्व आदिशु, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनके अंदर कोई भी क्षोभ नहीं पैदा होता है, हलचल नहीं होती है और ये एक सामान्य स्थिति में हो जाते हैं तो उसको प्रलय कहते हैं। कौन करता है, आदि पुरुष, जो आदि पुरुष है जिससे पहले कोई नहीं था उसको आदि, जैसे हम गोविंदम आदि पुरुषम गाते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, तो वो आदि पुरुष इस प्रकार से काल के द्वारा तीनों गुणों को सामान्य एक एक सम स्थिति में स्थापित करके और फिर इस प्रलय का कार्य काल के द्वारा करता है। उस वक्त क्या होता है प्रलय के समय, प्रलय के समय आंधी तूफान आती है, बहुत ज्यादा वर्षा होती है, सूरज नीचे आ जाता है, बहुत गर्मी होती है और सब कुछ, और नीचे अनंत शेष जो है वहां उसके मुख से ज्वाला निकलती है और फिर ये सब कुछ जल निगमन हो जाता है, जल निगम, जल के अंदर सारा ब्रह्मांड जो है प्रलय के समाप्त प्रलय के जल में चला जाता है। अब वो क्या होता है, जो समान हो जाता है, जब समान हो जाएगा, गुण समान हो जाएंगे तो प्रकृति का नाम क्या होता है, प्रधान, उसको कहते हैं प्रधान। प्रधान क्या है, प्रधान जब सृष्टि प्रलय के समय भगवान के अंदर रहती है तब उसको प्रधान कहते हैं। तो ये प्रधान पुरुष ईश्वरः, और ये पुरुष शब्द यहां है जीवों के लिए है, प्रधान और जीव, प्रधान अलग हो गया जीव अलग हो गए, इसका मतलब शरीर जो जीव का था वो चला गया प्रधान में और जीव आत्मा है वो अलग हो गई, तो जीव अलग हो गए और भौतिक सारा सामान अलग हो गया, और जो भौतिक सामान इकट्ठा हो गया जो अभी प्रलय के काल में एक जगह भगवान के अंदर पड़ा है उसका नाम है प्रधान, और जो सारे जीव पड़े हैं वहां सोए हुए हालत में, लेकिन ये जीव अपनी सूक्ष्म शरीर के साथ हैं, ये जीव मुक्त नहीं है, इनका मन बुद्धि अहंकार दूषित चित्त इनके संग है, और इसलिए ये अपने मन, जब दोबारा सृष्टि होगी तब ये वापस जहां जहां इन्होंने अपने कर्मों को छोड़ा था, जो जो इच्छा करी थी वो सृष्टि के समय उसी उसी जो है रूप में अथवा उसी कर्म के अनुसार उसी जूनी में आएंगे और अपना आगे का कर्म का फल भोगेंगे। ये मुक्त जीव नहीं है, भगवान के उदर में है फिर भी मुक्त नहीं है, ये तो केवल प्रलय काल के लिए वहां विश्राम कर रहे हैं। तो एक प्रधान हो गया, एक पुरुष हो गया, कहां रहते हैं, ईश्वर के यहां रहते हैं। तो वो ईश्वर कैसा कैसा है, परा अवराणाम, पराणाम, परा कहते हैं देवता आदि को और अपरा कहते हैं मानव और नीचे के जूनियों वालों का। परा अवराणाम परम, इन दोनों से परे है भगवान, देवताओं से भी परे है, ऊंचों से ऊंच जूनी वालों से भी परे है, नीच जूनी वालों से भी परे है। आसते केवल्य संयतः, तब वो अकेला रहता है और कोई नहीं रहता है, केवल अकेला रहता है और कोई संज्ञा नहीं रहती है। कोई संज्ञा नहीं रहती है का मतलब न तो जीव की संज्ञा उस वक्त दिखाई देती है, ये संज्ञा है। संज्ञा का मतलब होता है उस वक्त न जीव अलग दिखते हैं और न सृष्टि अलग दिखती है, उस वक्त केवल भगवान होते हैं और कोई नहीं होते हैं। और केवल अनुभावे न आनंद, और उस वक्त जो ये भगवान का स्वरूप है केवल ये आनंद का अनुभव करने वाला संदोह पूर्ण रूपी से निरुपाधि का, उस वक्त कोई उपाधि, वैसे भी भगवान में कोई उपाधि नहीं है। उपाधि का मतलब है, उपाधि का मतलब है डेजिग्नेशन, कोई उसकी बाहर की पहचान नहीं है, किसी के साथ भौतिक कोई संबंध नहीं है। ये सब चीज़ें भगवान में है फिर भी भगवान का इनके साथ संबंध नहीं है। तो ये पूरे का पूरा श्लोक प्रलय भगवान सारी सृष्टि को अपने अंदर कैसे लेते हैं उस प्रक्रिया का इसमें वर्णन है। अब इस सारी प्रक्रिया को और हमारे प्रभुपाद जी के शिष्यों ने यह भाव लिखा है कि भगवान जो मुक्ति दाता है, ये तो जो केवल का अर्थ ऐसा भाव लिखा है, अगर उसके ऊपर हम अपने मन को केंद्रित कर रहे हैं तो संसार के दुख से मुक्त हो जाएं, चिंताओं से मुक्त हो जाएं और हमारे सारे बाहर की उपाधियां समाप्त हो जाएं। लेकिन कम बुद्धि वाले लोग वो जब ये भगवान के विषय में, रूप के विषय में नहीं जानते हैं तो फिर कहते हैं भगवान निराकार है, और या तो कहते हैं ये संसार भोग के लिए है, तो या तो निराकार की तरफ जाके भगवान के बराबर होने की इच्छा करते हैं या संसार को भोगने का जो है प्रयास करते हैं, और फिर वो उस हमेशा परेशान रहते हैं। तो इसके बाद ये यहाँ हमको राय दे रहे हैं कि अगर इसके बजाय हम भगवान की भक्ति करें तो हम सच्चित आनंद भगवान के अनुभूति कर सकते हैं और अपने आप को केवल अनुभव आनंद और संदोहा, इसका मतलब आनंद के समुद्र में अपने आप को निमग्न कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने भावार्थ इसका लिखा है। लेकिन ये है असल में भगवान की संहार लीला। अब संहार लीला के बाद सृष्टि कैसे करते हैं, अब सृष्टि का वर्णन कर रहे हैं। केवलात्मानुभावेन स्वमायां त्रिगुणात्मिकं संक्षोभ्यं सृजते आदौ तया सूत्रं अरिन्दमा। हे शत्रुओं को पराजय करने वाले अरिदमन महाराज यदु, केवल आत्मानु अनुभावेन, भगवान जो अपने आनंद में योग निद्रा में सोए हुए होते हैं, भगवान योग निद्रा में सोए हुए होते हैं अनंत शेष के ऊपर, जब उनको सृष्टि करने का समय होता है तब स्वमायाम त्रिगुणात्मक, जो भगवान की त्रिगुणी माया है, सतो रजो तमोगुण की माया है, उसमें क्या करते हैं, संक्षोभयम, उसमें क्षोभ पैदा करते हैं, उसमें हलचल पैदा करते हैं। किसके द्वारा, काल के द्वारा, काल के द्वारा उसके अंदर हलचल पैदा करते हैं, उसके अंदर क्षोभ पैदा करते हैं, उसके ऊपर दृष्टि डालते हैं। सृजति आदव, फिर शुरू शुरू में सृष्टि करते हैं, सृजति का मतलब सृष्टि करते हैं। तया सूत्रम, तया सूत्रम का यहां परिभाषा है महत्तत्व। अब जो प्रधान आपको पहले बताया वो प्रधान है सारी भौतिक प्रकृति, प्रलय काल के समय जब पड़ी हुई है भगवान के पेट में तब उसका नाम है प्रधान। लेकिन जब उस प्रधान को बाहर सृष्टि के समय बाहर निकाला जाता है और उसके ऊपर काल से क्षोभ किया जाता है, हलचल पैदा की जाती है और उसके अंदर जीवों को डाल दिया जाता है, तब उसका नाम होता है महत्तत्व। इसका नाम यहां लिखा है सूत्रम। तो ये ऐसे आप समझ लिए दोनों की एक उदाहरण है। खेत है, अभी भी एक जमीन का टुकड़ा है, उसको हम कहते हैं खेत। लेकिन जब उसके अंदर बीज डालते हैं, सवारते हैं, तब उसको कहते हैं खेत। तो दोनों स्थिति में खेत है, लेकिन एक खेत है वो बंजर जो है बेकार पड़ा है, यूज में नहीं है, एक खेत है उसके अंदर बीज डाले हैं, तो अब इसमें जो है वो जो जो फसल होगा, अब इसके अंदर कुछ ना कुछ उगेगा। तो जो महत तत्व है वो बीज डालने के बाद खेत का उदाहरण है, और जो प्रधान है वो खेत बिना बीज वाला है। देखो आपने ऐसे देखा है, अभी देखो चारों ओर से सब सूखा पड़ा है धरती, ऐसे बरसात रात रात में आए तो पांच दिन में चारों ओर हरियाली हो जाती है, तो कोई बीज तो नहीं डालता है, कहां से होती है? पहले से बीज अंदर पड़ा होता है, बरसात पड़ते ही हरियाली हो जाती है। ऐसे जीव अंदर भगवान के पड़े हैं, जैसे सृष्टि होती है वो जो जो अपने अपने कर्म के अनुसार अपनी अपनी जोनी लेके काम कर देते हैं। जैसे हम रात को सो जाते हैं, सारे काम हमारे बंद हो जाए, दुकान बंद हो गया, हिसाब किताब बंद हो गया, किसी का पता नहीं है, दूसरे दिन सुबह उठते हैं, जहां काम छोड़ा है वहां से काम आगे शुरू करते हैं। तो ऐसे भगवान ये सृष्टि जो करते हैं उसके कर्म का यहां वर्णन है कि भगवान सृष्टि कैसे करते हैं। तो यहां एक अर्थ लिखा है केवल, जो केवल आत्मा आनंद भूते, वहां केवल का अर्थ लिखा है शुद्ध, जो भगवान का काल का स्वरूप है। केवल का मतलब बिल्कुल शुद्ध पवित्र, उसका मतलब भगवान की काल शक्ति। और ये भगवान की काल शक्ति ये भगवान से अभिन्न है और ये दिव्य है, ये भगवान का स्वरूप है। और यहां यदु महाराज को अरिंदम इसलिए कहते हैं कि महाराज ये माया की बात चल रही है जो संसार में सबको मोहित करती है, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो इस संसार की माया के काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर उसके ऊपर विजय प्राप्त करता है। आप अरिदमन हैं, आप जैसे शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, ऐसे माया ने इस जगत में ये छह शत्रु हमारे साथ डाल दिए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, और ये जो है इनके ऊपर विजय प्राप्त करें। इसलिए इस संबोधन से ये भाव कुछ आचार्यों ने हमारे यहाँ लिखा है, और सूत्रम महत्तत्व को कहते हैं, और भागवत के तीसरे स्कंद में इस सृष्टि कर्म का सारा वर्णन है। और फिर ये कहा जाता है कि ये जो भगवान सृष्टि करते हैं ये सृष्टि भगवान से निकलती है, इसलिए ये सत्य है। जैसे मायावादी कहते हैं कि जगत मिथ्या, ये मिथ्या नहीं है। ये मिथ्या क्यों नहीं है, झूठी क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान से निकलती है। जो चीज भगवान से निकलती है वो झूठी कैसे हो सकती है? लेकिन निश्चित रूप से ये अस्थाई है, ये टेम्पररी है, ये सदा रहने वाली नहीं है, ये थोड़ा समय रहती है, बस यही इसका अंतर है। और फिर एक और बात यहां लिखी है कि भगवान व्यक्ति है, भगवान साकार है, भगवान निराकार नहीं है। अब 20वें श्लोक में तामाहो स्त्रीगुण व्यक्तिम सृजंतिम विश्वतो मुखम यस्मिन प्रोतम इदम विश्वम येन संहरते पुमान। तान जो महत्तत्व होता है, जिसको सूत्र कहा गया है, वो महात्मा लोग कहते हैं त्रिगुण, वो त्रिगुण की माया है। व्यक्तिम वो व्यक्त होती है, संसार में सारे रूप बनाती है। ये सारे रूप किससे बनते हैं? हमारी सब शक्लें बनी है, ये माया ने बनाई है, ये माया के सारे रूप हैं। और विश्वतोमुखम, इस संसार के अंदर 84 लाख की जूनियां हैं, ये सारी उसी माया ने बनाई हैं। और उस महत तत्व में, ये सारे महत तत्वों में समाये हुए हैं। और ये महत तत्व जो है उसके अंदर ये सब कुछ समाया हुआ है, जीव भी इसमें ही समाये हुए हैं, इसके बना, इसका ये जगत सारा इसका बना हुआ है। तो इसमें ये लिखा है कि जगत सत्य है, मिथ्या नहीं है। अब ये उदाहरण देके इस प्रसंग का उपसंहार कर रहे हैं कि क्या सीखा है। यथो यथोर्णीनाभिर हृदयात् ऊर्णाम संतत्यः वक्त्रतः तया व्यर्त्य भूयस्तम ग्रस्त्य एवं महेश्वरः। अब इसमें उपसंहार कर रहे हैं, जैसे यथा, जैसे उर्णी नाभि मतलब मकड़ी के द्वारा उसके अपने अंदर से हृदयाद अपने अंदर से उर्णी जो जाल निकलता है, और संतत या उसके अंदर तारें सब निकलती हैं, और वक्त्रतः वो उसके मुख से निकलती हैं, तया विहृत्या भूयस्ताम, और जब वो चाहता है तब उस सारे को उसके अंदर विहार करता है, सुख भोगता है, और जब चाहता है तब उसको ग्रस्ती ऐसे उसको अंदर अपने पेट में निगल लेता है। उसी प्रकार एवं इसी प्रकार महाईश्वरः भगवान इस जगत की सृष्टि करके फिर इस जगत को अपने अंदर समेट लेते हैं। तो अभी तक जो मुख्य चीजें प्रायः हमारे प्रचार में आती हैं और जो हम सुनते रहते हैं, उसमें महत्तत्व क्या है, प्रधान क्या है, काल क्या है, तीन गुण सामान्य रूप में होते हैं तो प्रलय होती है, जब उनमें क्षोभ होता है तो सृष्टि होती है, तो ये शब्द हैं, ये सब भगवान से निकलते हैं। सारे लोकों की सृष्टि कारुण दक्षाय विष्णु करते हैं, एक लोक की सृष्टि गर्भो दक्षाय विष्णु करते हैं। तो ये सारा अभी तक का सुना। अब एक 24वां गुरु रह रहा है, उसका वर्णन हम करते हैं, और ये गुरु है भृंगी, इसको अपनी भाषा में कहते हैं भृंगी। ये भृंगी गुरु जो है, यत्र यत्र मनो देही धार्यते सकलम धिया स्नेहा द्वेषाद भयाद वापी याति तत्त स्वरूपतां। तो पहते कहते हैं यत्र यत्र मनो धी धा, जहां जहां इस देहधारी व्यक्ति का, मानव का मन धारणा करके पूर्ण रूप से बुद्धि से जहां जहां अटकता है, टिकता है, जिसके ऊपर ध्यान करता है, बोला कैसे ध्यान करता है, बोला स्नेहाद स्नेह से करे, द्वेषाद किसी से द्वेष के द्वारा करे, भयाद या भय से करे। देखो हमारे जीवन में हम अपने बच्चों से स्नेह से उनका ध्यान करते हैं, कुछ शत्रु होते हैं या बराबर वाले होते हैं उनसे द्वेष करते हैं, और कुछ वो कुछ बहुत हमसे शक्तिशाली होते हैं उनका भय करते हैं, लेकिन उनका ध्यान अगर किया जाता है, याति तत्त स्वरूपताम, तो जीते जी ही उन जैसा ही विचार हमारा हो जाएगा और उस जैसा रूप भी हो जाएगा, वैसा विचार और वैसा रूप भी हो जाएगा। अब इस श्लोक में जो कहा गया है ये बहुत आसान सी बात की है कि हम जिस चीज का ध्यान करेंगे, जिस चीज के ऊपर अपने मन को और बुद्धि को केंद्रित करेंगे, और जहां हमारी चेतना टिकेगी, उसका सारा स्वभाव और उसका सारा विचार हमारे अंदर आने लगेगा, यहां तक कि हमारा रूप भी वैसा हो जाएगा, नहीं तो व्यवहार तो वैसा हो ही जाएगा, रूप इस जीवन में ऐसा हो जाए, भृंगी तो इसी जीवन में ऐसा करती है, लेकिन दूसरे जन्म में तो वैसा रूप मिलेगा ही मिलेगा। तब तो ये भगवत गीता का प्रसिद्ध श्लोक है, यम यम वापि स्वम भावम त्यजते अन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अंत समय जिसका ध्यान किया, मरते समय उसी रूप को, जिस रूप का अभी ध्यान कर रहे हैं, सारी जीवन में करेंगे उसी रूप को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ ये समझना चाहिए कि अगर हमको भगवान के रूप का ध्यान करें, बुद्धि लगाकर अच्छी तरह से मन उसके ऊपर केंद्रित करें, उसका श्रवण करें अच्छी तरह से, बड़ा ध्यान पूर्वक करें, तो निश्चित रूप से दूसरे जन्म में हमको भगवत धाम की प्राप्ति हो, भगवान जैसा स्वरूप मिले। ये इसमें कौन सी, यहां देखो तीन शब्द लिखे हैं, स्नेहाद, स्नेह से भगवान का ध्यान कौन करें, भागवत में श्लोक लिखा है स्नेह से यदुवंशी, ये स्नेह से ध्यान कर रहे हैं क्योंकि भगवान उनका अपना है। द्वेष से कौन कर रहा था, द्वेष से कर रहा था शिशुपाल, और भय से कौन कर रहा था, कंस। लेकिन इन सब के सबको भगवान ने मुक्त कर दिया और शिशुपाल भगवान के अंदर ही समा गए, भगवान का स्वरूप ही चतुर्भुज रूप लेके और बैठे हुए हैं वैकुंठ के, वहां जय विजय के रूप में पहले पहले भी थे, लेकिन कंस को भी भगवान ने मुक्त कर दिया क्योंकि भय से। तो कोई भय से चिंतन करे, स्नेह से चिंतन करे, द्वेष से चिंतन करे, जिस जिस चीज का चिंतन करेगा, जिसके ऊपर ध्यान करेगा, वही दूसरे जन्म में निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। जैसे महाराज भरत हिरण का ध्यान करते हुए अंत समय में शरीर छोड़ा तो दूसरे जन्म में हिरण बनना पड़ा, ऐसे तो बहुत से दूसरे जन्म में दूसरे उसी भाव में गए हैं, इसके तो बहुत से उदाहरण हैं। वो पुरंजन मरते समय स्त्री का ध्यान करते हुए मरा, दूसरे जन्म में विदर्भ भी वो आदमी था वो स्त्री बन गया, और जो स्त्री थी पुरुष का ध्यान कर रही थी तो दूसरे जन्म में वो पुरुष बन गई। लेकिन यहां इसी जन्म का भी उदाहरण यहां दिया हुआ है कि इसी जन्म में उसके विचार, उसका व्यवहार, उसकी चेतना वैसी ही हो जाती है। इसलिए कहते हैं भगवान के भक्त जो भगवान के ध्यान में तलीन होते हैं वो जीवन मुक्त है, वो जीवन मुक्त है, और उनका व्यवहार भगवान के भी, भगवान के गुण थोड़ी मात्रा में उनके अंदर प्रकाशित होने लगते हैं, प्रकट होने लगते हैं, वो जीते जी ऐसे हो जाता है। अब इसके उपसंहार का श्लोक 24वां जिसमें 23वां इसमें उदाहरण कहां से लिया है, कीटहा प्रेषकृतिम ध्यायन कुरियान तेन प्रविष्टः याति तव सात्मतां राजन पूर्व रूपम असंत्यजन। तो प्रेषकृतम का अर्थ ये है, इसका पूरा नाम है सुपेशकृत, सु मतलब सुंदर, पेश मतलब रूप, कृत मतलब कर दे, दूसरे के रूप को सुंदर कर दे, सुपेशकृत, ये संस्कृत में नाम है भृंगी का। वो क्या करती है, कीट, एक छोटे कीट को, छोटे अपने से कमजोर किसी जीव को पकड़ती है, और सुपेशकृतम क्या करती है, कुड़ियाम, कुड़ियाम का मतलब अपना जो उसने मिट्टी का एक घर बनाया है, जो उसका मकड़ी ने, ये है भृंगी का जो घर है, मिट्टी का जाला है, उसके अंदर तेन प्रविष्ट है, जबरदस्ती उसके अंदर घुसाती है उसको, और जब घुसाती है ध्यायन, तब वो कीट उस भृंगी का ध्यान करता है। याति तत सात्मताम राजन, हे महाराज, वो उसका ध्यान इतना करती है भय के कारण, हर समय वो वहां हो तब भी ध्यान करती है, और वो बाहर भी चली जाए तो भागने की हिम्मत नहीं रहती है, उधर ही पड़ी रहती है, उसी का ध्यान करती रहती है। तो तत सात मताम, तत उस भृंगी जैसा सात मताम वैसी उसकी मति हो जाती है, सात मताम का मतलब उसकी मति ऐसी हो जाती है, उसका पूरा अस्तित्व ऐसा हो जाता है महाराज, पूर्व रूपम, जो पहले कीड़े का रूप था वो रूप ही बदल जाता है, अंतेजम असंतेजम, मतलब बिना किसी शरीर को बदले के उसी शरीर में वैसा ही उसका रूप हो जाता है। तो इसके तात्पर्य में हमारे प्रभुपाद जी के शिष्य लिखते हैं कि उसकी चेतना ऐसे हो जाती है इस जन्म में, और दूसरे जन्म में निश्चित रूप से वो उसी रूप में आ जाएगी। लेकिन हमारे लिए यहां शिक्षा ये है कि कैसे भी भगवान का, लेकिन हमारे लिए स्नेह से भगवान का ध्यान है, द्वेष से भगवान का ध्यान क्यों करेंगे, भय से क्यों करेंगे। दुनिया में कुछ लोग भगवान का भय करते हैं, पाप करेंगे तो भय लगेगा कि पता नहीं पाप आगे नरक में जाना पड़ेगा, दंड भोगना पड़ेगा, लेकिन भक्तों को स्नेह से, और ये जब स्नेह शब्द आता है ना तो असल में दास्य भक्ति शुरू होती है। जब तक स्नेह शब्द नहीं आया है और जब तक केवल हम भगवान को बड़ा मानते हैं, भगवान को महान मानते हैं, भगवान को सर्वव्यापक मानते हैं, भगवान को सर्व आकर्षक मानते हैं, सबको अपनी ओर खींचता है, तब तक शांत रस है। जब स्नेह उसमें आया, ममता आई, तब दास्य रस शुरू होता है। तो हमारे को तो भगवान का सुमरण स्नेह से करना चाहिए और स्नेह से भगवान का सुमरण करते करते इस जीवन में जीवन मुक्त की तरह रह सकते हैं। शरीर छोड़ने से पहले ही जीवन मुक्त स उच्यते, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। जो चीज़ें भगवान की सेवा में लगानी है उनको भगवान की सेवा में लगानी है, जो भगवान की सेवा के काम की नहीं है उनको छोड़ दिया है, ऐसे वो निश्चिंत होके जीवन मुक्त होके इस दुनिया में रह सकता है। तो इस प्रकार से इससे हमने ये शिक्षा मिली ली है कि भगवान के रूप का ध्यान करते रहें, इसलिए हमारे को विशेष रूप से भगवान के रूप का ध्यान करना चाहिए। दास्य भाव में भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। कितने सुंदर भगवान के चरण कमल हैं, कैसे उसके ऊपर तुलसी दल और चंदन लगा हुआ है, कैसे भगवान के पायल पहने हैं, कैसा पीताम्बर पहना है, ऐसे भगवान का मुख का सुंदर दर्शन करना चाहिए। ऐसे भगवान के चरण से लेके मुख तक अच्छी तरह से रोज ध्यान करने का, और फिर भगवान के नाम के सुमरण, नाम के अंदर रूप भी है, नाम के अंदर लीला भी है। आप जब कृष्ण शब्द कहते हैं तो कृष्ण के अंदर गुण तो है सर्व आकर्षक, अगर गोविंद कहेंगे तो उसके अंदर लीला भी है, गायों को आनंद देने वाला गौचारण लीला है, गोपाल कहेंगे तो इन नामों के अंदर गुण भी है और लीलाएं भी हैं, और उसका जैसे ध्यान करेंगे तो इस जन्म में तो जीवन मुक्त हो जाएंगे और जब शरीर छूटेगा तो भगवान जैसा रूप का मतलब ये है ग्वाल बाल का रूप गोलोक धाम में प्राप्त होगा, और अगर कोई वैकुंठ जाने वाला है तो चतुर्भुज रूप वैकुंठ में भगवान जैसा रूप सारूपीय मुक्ति मिल जाएगी, सालोकीय मुक्ति मिल जाएगी, सारेष्टि मुक्ति मिल जाएगी, सामीप्य मुक्ति मिल जाएगी। ये वैकुंठ की चार मुक्तियां हैं, और भगवान जैसा रूप गोलोक धाम में धारण करना, ये ग्वाल बाल का रूप है या गोप गोपी का रूप है, तो उसको धारण करके भगवान की सेवा में लग सकते हैं। यहाँ तक 24 गुरुओं का कथा पूरा होता है, अब उपसंहार कर रहे हैं। कल हमने आपको कहा था कि इसके बाद 25वें गुरु को वर्णन आता है, वो खुद ही अपने मुंह से कहेगा कि 25वां गुरु मेरा ये शरीर है जिससे मैंने शिक्षा ली है, लेकिन वो गुरु भी 24 गुरुओं में नहीं गिनवाया है। और हमारे 7वें अध्याय में प्रभुपाद जी के शिष्यों ने लिखा है 28 गुरु। तो मैं अब कुछ भक्तों से चर्चा कर रहा था, तो एक दृष्टि से मैंने कल आपको कहा कि भूरिजन प्रभु ने तो 26 लिखे हैं, एक क्या उसने किया है भृंगी को दो कर दिया, उसको जो भृंगी नहीं आपने मधुमक्खी को दो कर दिया है, भौंरा और मधुमक्खी। और मैं आज किसी से पूछा कि ये तो ये 26 हो गए, दो और अगर आपको और ऐड करके 28 करके उनकी बात को पूरा करना है तो पृथ्वी से वृक्ष को और पर्वत को अलग कर दिया है, पृथ्वी से शिक्षा, वृक्ष से शिक्षा और पर्वत से शिक्षा। तो वो ऐसे 28 अगर करेंगे तो हो जाएगा। और किसी ने तो मुझे कहा अगर कहो तो प्राण वायु को सामान्य वायु से अलग करें तो फिर तो 29 हो जाएंगे। लेकिन जो प्रचलित साधु समाज में 24 गुरु हैं, 25वां वो अपनी इच्छा से कह रहा है। तो ये श्लोक पढ़ के, ये श्लोक पढ़ते हैं, एवं गुरेभ्यो एतेभ्या एषा मे शिक्षिता मतिः। एवं गुरेभ्यो बहुवचन में इन गुरुओं से, एताभ्या एष इस प्रकार मैंने शिक्षिता मतिः, मेरी बुद्धि से इन गुरुओं से मैंने शिक्षा इनके व्यवहार से ली है। कुछ शिक्षाएं जो मैंने इनसे करनी चाहिए वो ली हैं, और कुछ शिक्षाएं जो त्यागनी चाहिए वो मैंने इनसे ली है। मधुमक्खी से मैंने शिक्षा ली है कि संग्रह नहीं करना चाहिए, और मैंने कुंवारी कन्या से शिक्षा ली है कि सबके साथ नहीं रहना चाहिए। तो कहीं अच्छी शिक्षा ली है जिसको ग्रहण किया है और कहीं है शिक्षा है जिसको त्याजा है। अब अपनी तरफ से कह रहे हैं, स्वात्मोपशिक्षितम बुद्धिम शृणो मे वदत्तः प्रभो। हे महाराज, अपने शिष्य यदु को जो उनसे शिक्षा ले रहे हैं उसको प्रभु करके संबोधन कर रहे हैं। ऐसे नारद पहला गुरु है जो व्यास देव को प्रभु करके संबोधन करता है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने शिष्यों को प्रभु और प्रभुपाद जी ने हाँ अपने शिष्यों को प्रभु संबोधन किया। इसका मतलब है कि गुरु का जो काम है वो सेवा है। सेवा क्या है? शिष्य को शिक्षित दीक्षित करके भौतिक जगत के बंधन से मुक्त करके भगवान के चरण में अर्पण करे, ये गुरु का मुख्य धर्म है। तो यहां स्वात्मा, मैंने अपने शरीर से उपशिक्षितम, जो मैंने शिक्षा ली है, कैसे ली है? बोला बुद्धि से ली है। मैंने अपनी बुद्धि से शरीर से जो शिक्षा ली है वो महाराज यदु आप जरा मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। अभी तक तो आपने पूछा था वो मैंने कहा, लेकिन मैं अपनी तरफ से बड़ा प्रसन्न हूं आपके ऊपर। आपको मैं एक ऐसी शिक्षा बताऊं कि आप सब जगह जाके तो इन गुरुओं को देख नहीं सकते, लेकिन ये शरीर तो आपके साथ, ये गुरु आपके साथ चलता ही है हर वक्त। ये शरीर तो आपके साथ ही है, ये आपका बड़े से बड़ा गुरु है। इससे मैंने क्या सीखा है ये आप मुझसे सुनो। तो एक श्लोक पढ़ लेते हैं, लेकिन कल यहां से आगे, अब हम 25वें में पहुंचे हैं, 33 श्लोक हैं, 8 एक श्लोक हैं, ये कल इसका पूर्ण आहुति करके भोग डालेंगे ये अध्याय का। फिर परसों से हम दूसरा भागवत धर्म की शिक्षा, नव योगेंद्र शिक्षा के नाम से, जो 10-11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के पहले श्लोक से ही शुरू करेंगे। फिर जैसे भगवान की इच्छा यथामति, और जो भगवान प्रेरणा देंगे उसको आगे चलाएंगे। तो अब यदु महाराज को स्नेहपूर्वक भगवान दत्तात्रेय अवधूत कह रहे हैं कि शरीर से मैंने क्या सिखाए। देहो गुरुर्मम वृक्ति विवेक हेतु, मेरा गुरु है ये मेरा शरीर, ये देह मैंने इसको गुरु करके माना है। अरे इससे क्या सीखा महाराज? वृक्ति और विवेक हेतु, इससे मैंने वृक्ति सीखी है। वृक्ति का मतलब त्याग। और क्या सीखा है? विवेक। विवेक कहते हैं बुद्धि को जो निर्णायक बुद्धि हो, सूक्ष्म बुद्धि हो, जो जो जैसे जैसे हंस होता है पानी को दूध से अलग करता है, ऐसी निर्णायक बुद्धि असत को सत से अलग कर सके, उसको कहते हैं विवेक। तो विवेक जो है वो डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलिजेंस को कहते हैं विवेक, डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलिजेंस। ये मैंने ये इसके कारण मैंने गुरु इस शरीर को क्यों किया है? क्योंकि इससे मैंने ये दो शिक्षाएं ली। बिभ्रत समसत्व निधनम सतार सतारति उदकृतम। बोला कैसे आप सीखे ये? बोला ये शरीर अब तो हम खा पी रहे हैं, चल रहा है, लेकिन इसका निधनम होगा। अब तो है लेकिन एक दिन ये छूटेगा, और जब तक है सत सतत, जब तक है सतत आरती, तब तक सदा ही दुख देता रहता है, परेशान करता रहता है। ये आरती शब्द वो है जिसको आर्तो कहते हैं, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तृ ऋषभ। आर्त का मतलब जो बहुत बड़ा दुख में है, कि ये शरीर सदा, सतत का मतलब सदा और आरती का मतलब दुख, ये शरीर हमेशा परेशानी का कारण है, दुख का कारण है, चिंता का कारण है, और एक दिन इसको छोड़ना पड़ेगा। ये मैंने अच्छी तरह से, अब तो इसका पालन पोषण कर रहे हैं, अभी तो ये इसका अस्तित्व है, लेकिन हम जान गए हैं कि इसको एक दिन ये हमको छोड़ देगा, ये छूट जाएगा, और जब तक रहेगा तब तक ये हमेशा संकट देता रहेगा। उदकृतम तत्वानि अनेन, और भविष्य में भी, आगे वाले श्लोक में आएगा कि छूट जाएगा तो फिर दुख तो खत्म हो जाएगा। बोला नहीं 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 नहीं, छूटने से पहले, जैसे पेड़ खत्म होने से पहले अपने कई बीज छोड़ के जाता है, दूसरे पेड़ पैदा होते हैं ना, खत्म होने से पहले अपने कर्मों से भविष्य में होने वाले एक नहीं अनेक जन्मों के बीज पैदा करता है। तत्वानी अनेन, इस प्रकार से इस संसार के अंदर विश्व विमर्श्यामी, मैं इसके ऊपर बहुत विचार कर रहा हूं। मैंने विचार करके देखा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं विमर्शेण अशेषेण, अब अच्छी तरह से मैंने शिक्षा दी, इसके ऊपर आप विचार कर लो, फिर जो आपको चाहे वो करो। तो मैंने अच्छी तरह से विचार किया इस शरीर की प्रक्रिया को देखकर, तो क्या आपने सीखा? बोला पार्क्यम, ये हमारा नहीं है, हम इसको ढो रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं गुरुजी, हमारा नहीं है। क्यों? बोला जिस दिन ये छूट जाएगा तो फिर अगर ये इसको जलाएंगे तो ये भस्म हो जाएगा, अगर इसको कब्र में डालेंगे तो ये जब डीकम्पोज हो जाएगा तो इसको कीड़े खाएंगे, और अगर ऐसे जंगल में कहीं समाप्त हो गया तो गीद और सियार खा जाएंगे, पानी में होगा तो जलचर और कछुए खा जाएंगे। तो ये शरीर जो है दूसरे का भोजन है, ये शरीर हम अपना मान के बैठे हैं, लेकिन ये है पर किया, ये पराया है। इति अवस्थ, तो ये मैंने निर्णय कर लिया, हमारा बस नहीं चलेगा उस वक्त, क्योंकि हम तो ये शरीर छोड़ देंगे, तब इस शरीर को क्या, इसका कौन मालिक बनेगा कुछ पता नहीं। कोई कहता है ये मेरा शरीर है, मालिक कहता है मेरा, कहता है बेटा, कहता है बाप मेरा है, पत्नी कहती है पति मेरा है, लेकिन ये शरीर किसका है? बाप के मैंने पैदा किया है, लेकिन ये शरीर है किसका? ये कहता है पराया है, ये सब कहते हैं, ये भी कहते हैं, तो इसका मतलब पराया ही हुआ ना। फिर कहते विचरामी असंग, इसलिए मैं असंग रूप से पूरे धरती के ऊपर विचरण कर रहा हूं, घूम रहा हूं, मुझे मैंने शरीर के इस गुरु से विवेक और विरक्ति वैराग, इन दोनों की शिक्षा ली है, शरीर के क्षणभंगर होने के कारण, शरीर के दुखदायी होने के कारण, और शरीर, अब इसके दूसरे श्लोक में इसके बीज का वर्णन आएगा, मेरे ख्याल में आज का समय समाप्त हो रहा है, तो और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। तो यहाँ से आगे शरीर से क्या शिक्षा मिलती है उसका वर्णन कल करेंगे। हरे कृष्णा, ये शरीर हमारा बड़ा गुरु है। वैसे वेदों में तो कहा है कि पहला आपका शिष्य मन को बनाइए, मन मणिराम अगर आपकी बात मानता है तो फिर दुनिया में दूसरे शिष्य बनाओ, नहीं तो पहला शिष्य मणिराम मन मानता है तो आप समझो कि आगे चल सकते हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ कुछ कह रहे थे, मैं बीच में बोला, बोलिए जी।
प्रभु जी, दो चीजें थी, एक तो ये छोटा सा पॉइंट था, एक हम आप एग्जांपल लेते सिल्क वर्म का भी, कई बार मैंने सुना है सिल्क वर्म होता है वो अपना
नहीं, सिल्क वर्म में क्या है, सिल्क वर्म में वो सिल्क बनाता है, फिर क्या है उसको जो सिल्क वाला लेके आता है फिर उबालता है, वो बेचारा खुद भी मर जाता है और सिल्क वो खाता है, तो वो उसका उदाहरण इसमें नहीं है, उसका उदाहरण जो है वो है माया कैसे दुनिया में हमको बांधती है। हाँ, ये मकड़ी का उदाहरण यह है कि मकड़ी मरती नहीं है, मकड़ी जाला बनाती है, उसमें घूमती फिरती है, कीड़ों को पकड़ के विहार करके खा के फिर अपने उस घर को ही वहां से स्वयं पेट में वापस डाल देती है, तो वो मरती नहीं है। अगर उसको हम रेशम के कीड़े को कहेंगे तो उसको तो फिर कोई पकड़ के मारता है, भगवान को तो ऐसे कोई नहीं पकड़ सकता है, इसलिए वो रेशम वाला कीड़ा का उदाहरण या नहीं, ये मकड़ी का उदाहरण है। ये आपने देखा है घरों में ऊपर कोनों में जाले होते हैं, हम उतारते हैं, ये मकड़ी के जाले।
नहीं, वो मैं समझ गया, मेरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी कि जो सिल्क वर्म है उसका एग्जांपल आप बताते हैं कि वो अपना घर तो बनाता है लेकिन निकास द्वार नहीं बनाता है,
वो निकास द्वार, हाँ अच्छा, वो निकास द्वार नहीं बनाता, ऐसे किसी ने दिया है क्या उदाहरण, कहीं लिखा है क्या?
हाँ, ये मैंने आपने बताया कहीं और सुना होगा कि
नहीं, ये इंसान
ये, जो है वो फंसा रहता है अपनी चीजों में और
नहीं, ये सही है, ये निकास द्वार बनाता है, मकड़ी है निकास द्वार बनाता है, बाहर आता है फिर उसको खाता है, और वो अपने बाहर निकलने का द्वार नहीं बनाता है इसलिए उसके अंदर फंस जाता है, और फिर कोई रेशम का व्यापारी उसको ले जाके पानी में उबालता है और रेशम ले जाता है और वो मर जाता है। असल में ये रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को उदाहरण दिया है, माया के तीन उदाहरण दिए हैं, उसमें एक उदाहरण ये दिया है कि हम भी संसार के अंदर इतना सारा मोह माया कठी करके बड़ा जो है झमेला बनाते हैं, और अंत में हमारे अपने ही पुत्र परिवार वाले मरने के बाद अग्नि संस्कार करके हमारे का संवारा स्वाहा और माल सबको खा जाते हैं, उसके मालिक बन जाते हैं, ये माया है। तो उसमें उदाहरण आप अच्छा अच्छी बात कही गई, वो अपने निकलने का द्वार नहीं बनाता है। दूसरा जो है उसमें तोते का उदाहरण दिया हुआ है, माया तोता कैसे पकड़ता है, और एक बंदर का है, तीन उदाहरण है कि माया संसार में कैसे हमको पकड़ती है बराबर। ये वहां है जहां रामचंद्र से लक्ष्मण चित्रकूट में पूछता है कि भगवान आपकी माया क्या है, तो भगवान कहते समय तो ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी संक्षेप में माया के विषय में कह रहा हूं, मैं और मेरा जहां तक है वो सब माया है। तो ये माया का भगवान रामचंद्र की शिक्षा चित्रकूट में है। और दूसरा
अच्छा मेरा एक क्वेश्चन मेरा ये है, अभी आप जो भिरंगी वाला बता रहे थे,
हाँ भिरंगी, हाँ
उसमें आपने बताया वो भगवद गीता जो श्लोक है यम यम वापि स्मरण भाव, तो हमारे जो हम देखते हैं जनरली हमारे परंपरा में ऐसा चलता आ रहा है जो फैमिली लाइफ में कि जब कोई शरीर छोड़ने लगता है तो वो अपने रिश्तेदारों को याद करता है, और
तो
उल्टा हिसाब है,
तो वापस अपने परिवार में आएगा भाई जिसको उस वक्त, या उस वक्त जैसे हमारे पास तो ऐसे है, अपने पास तो गौड़िया वैष्णव में भक्तों में ऐसे है कि अंत समय चारों ओर भक्त बैठ के बहुत कीर्तन करते हैं कि उसको सवाय कीर्तन के और कुछ सुनाई ना दे, और केवल भगवान का नाम ही उसके कान में अंत समय पड़े और भगवान का कोई विग्रह हो जो उसके सामने रख दिया जाए, ऐसा ही उसको ध्यान कराना चाहिए। वैसे भी अपने पास वो तो बच्चों का बेचारा ध्यान करता है क्योंकि उसका मन आजीवन उसमें लगा हुआ है, इसलिए अभ्यास अभी से भगवान के ध्यान का और भगवान के स्मरण का करना चाहिए, और अंत समय हम न भी कर सकें किसी कारण से तो हमारे भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि उस समय वो आकर हमारे को भगवान की स्मृति दिला सकें। बाकी ऐसे हमारे पास अभी भी है कि तुलसी दल उसमें डालना है, मुख में गंगा जल डालना है, ऐसे कुछ क्रियाएँ करते हैं वो पुरानी वैदिक हैं, लेकिन कुछ क्रियाएँ रोना धोना उस वक्त करना नहीं चाहिए, नहीं तो उस जीव को बहुत बड़ा कष्ट होता है। वो जीव के निकलने के बाद रोना धोना तो आता है जरूर, वो प्राकृतिक है, वो तो आएगा स्वाभाविक है, लेकिन उस समय नहीं करना चाहिए जब उसके प्राण निकल रहे हो, तब जितना हो सके भगवान के नाम का उच्चारण किया जाए जो उसके कान में ध्वनि पड़े तो उस आत्मा का उद्धार होगा। हाँ जी, और कोई हरे कृष्णा देव कुमार धन्यवाद, और बोलिए। और किसी का कोई प्रश्न है? राय दादा जी आ गए, बोलो हरि बोल। आवाज नहीं आया, आपका माइक बंद हो गया। हाँ खुल गया, बोलिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हरे कृष्णा, वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण पदारविंद विष्णु जोशी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी कुर्सी बदल गई है।